पुलिस लाइन में, वहाँ गंगा के किनारे ही, जहाँ भी गया गंगा के किनारे। इसके बाद में घर छोड़ दिया तो गंगा के किनारे नवदीप के आश्रम में चला गया। इसके बाद में गुरुजी ने हमको जगन्नाथपुरी में रख दिया, समुद्र के किनारे। इसके बाद में मथुरा में जमुना के किनारे हमको उन्होंने रख दिया। जब मथुरा में घर घर में ब्रह्मचारियों के साथ में कीर्तन और प्रचार करता था, धीरे 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 दिल्ली, कानपुर, आगरा सब स्थानों में हरिनाम प्रचार करने लगा, पुस्तकें भी लिखने लगा। हमारे पूर्वाचार्यों के जो ग्रंथ संस्कृत में थे उनका हिंदी में अनुवाद करना आरंभ किया। आज तक मैं 120 ग्रंथ प्रकाशित कर चुका हूँ हमारे पूर्वाचार्यों के, रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि के। इसके बाद में
1996
में हमारे, उसके पहले मथुरा में भक्ति वेदांत स्वामी जो इस्कॉन के गुरु हैं वो आए और मेरी अध्यक्षता में उनको संन्यास हुआ, हमारे गुरुजी ने संन्यास दिया। इसके बाद वो चले गए पश्चिम देशों में, अमेरिका में, वहाँ से हमको बुलाने के लिए लगभग 500 पत्र दिए और प्रचार का विषय लिखे। मैंने कहा कि गुरुजी जब तक रहेंगे तब तक नहीं आऊँगा, उनकी सेवा में रहूँगा, पीछे आऊँगा। गुरुजी के अप्रकट होने के बाद में मैं
1996
में गया और तब से अब तक विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है छोटा बड़ा। इधर यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, अमेरिका के जितने भी
बड़े बड़े सिटी हैं,
बड़े बड़े सिटी हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि सारे विश्व में मैं घूमा। आज
इंडोनेशिया, मलेशिया,
हांगकांग, चीन, रशिया, हमारे घूमने का करीब करीब 26 बार विश्व की परिक्रमा कर चुका हूँ। अभी जाने का प्रोग्राम है,
29 को जाएंगे। अभी एक महीना पहले आए, अभी 29 को फिर जाएंगे।
अभी अमेरिका इत्यादि सब देशों में, इटली में जाएंगे।
गौड़ीय मठों के माध्यम से जो विदेशी जो भक्त हैं, कितनी संख्या होगी राधा कृष्ण भक्ति से जो जुड़े हुए हैं?
मैं कह नहीं सकता, अंदाज लाखों हूँ।
गौड़ीय मठ हाँ। कितने सेंटर हैं पूरे विश्व में?
हमारे
जी जी
कम से कम तो 15-20 सेंटर हैं, और वैसे तो प्रचार तो सारे विश्व में हमसे संन्यासी लोगों ने लिया है, करीब करीब 32-33 आदमियों ने, और वे सारे विश्व में वो प्रचार करते हैं।
आपका इंडिया में ही तो 1500 है, पूरा विश्व में 100 से अधिक होगा सेंटर।
हमारे ग्रंथों का हिंदी का, अंग्रेजी, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, समस्त भाषाओं में,
पोर्तुगीज,
जर्मन, फ्रांस, डच,
सब भाषाओं में करोड़ों करोड़ों रुपए की पुस्तकें छपती हैं और वितरण होती है।
लेकिन आपकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर संभवतः अभी तक कोई पुस्तक नहीं छपी है?
नहीं छपी, ओ
चल रहा है।
मैंने अपने गुरुजी के संबंध में तो लिखी है, किंतु अब शिष्य लोगों का कर्तव्य है कि वो हमारे जीवन
में। इसी का इस पर PhD कर रहा हूँ अभी, अमेरिका से चालू हो गया, शुरू हो गया है।
अन्य अन्य जो भक्ति धाराएं हैं उनके मुकाबले राधा कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं।
हाँ।
क्या क्या खास है?
कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, उनके चरित्र हैं। उनके सामने पुतना उनको मारने के लिए आई और उसको माता की गति गोलोक में दे दी। कृष्ण के निकट जो कोई भी जिस भावना से आया उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। रुक्मिणी सत्यभामा के अतिरिक्त किसके जेलों में बंद थी?
नरकासुर के।
नरकासुर के जेलों में 16,000 16,000 देश विदेश की बड़ी सुंदरी रूपवती गुणवती कन्याएं और स्त्रियां बंद थी। कृष्ण नारद जी के कहने से नरकासुर को मार करके उनका उद्धार किया और उनसे कहा कि तुम लोग अपना अपना पता बतलाओ, जहाँ तुम्हारे पति हैं सास ससुर या पिता है मैं उनके यहाँ भेजवा दूँ। उन लोगों ने कहा जैसे आप कृपा करके अब आप घर में मत भेजिए, हम आपके घरों में झाड़ू लगाएंगे, आपकी रानियों की हम सेवा करेंगे। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो कृष्ण उनको गरुड़ पर बैठा कर ले गए द्वारकापुरी में और सब उन सब से विवाह करके और उनको 16,108 रानियों की पदवी दान की। ऐसे उदार हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने ही अपनी शक्ति से द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कर्ण इत्यादि के प्राणों को खींच लिया था। अर्जुन तो दिखावे के लिए उन्होंने मारा था सब लोगों को या भीम ने, किंतु कृष्ण ने ही किया। किस लिए किया? उन दुष्टों को मार करके पृथ्वी का भार हरण करके उनको मुक्ति दे देंगे। किसी को मार करके उनको नरक नहीं दिया, उनको मार करके सुगति में उनको मुक्ति दे दी, जो कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि हजारों वर्षों में नहीं पाते हैं, मारते ही उनको मुक्ति। ऐसे करुणाशील हैं। उन्होंने रास एक ऐसी अद्भुत लीला है जो राम नहीं कर सकते, नृसिंह नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण ने लाखों गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण हो करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। और ऐसे उदार हैं कि उन गोपियों को अपने को ऋणी समझते हैं। तुम लोगों ने हमारे लिए अपने पति पुत्र भाई बंधु धर्म लोक लज्जा सबको छोड़ करके हमारे समीप आई, मैं तुम्हारा ऋण कभी भी ब्रह्मा की आयु में नहीं चुका सकता, फिर भी तुम लोग साधु हो, अपने गुणों से हमें ऋण से उन्मुक्त कर देना, तभी हम तुम्हारे ऋणी ही रहेंगे। ऐसे वो उदार हैं।
भगवान कृष्ण को 16 कलाधारी माना जाता है, 16 कलाओं के अवतार माना जाता है। ऐसा उनकी कलाओं को लेके कहीं कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है? आध्यात्मिक आश्रमों को आप जैसे ऋषि मनीषियों को छोड़ दें तो वो स्वरूप वो कलाएं या उनका कुछ प्रति?
देखिए रामचंद्र जी 16 कलाओं में हैं,
द्वादश कलाओं में,
द्वादश कलाओं में, क्योंकि सूर्य की 12 कलाएँ होती हैं इसलिए 12 कलाओं में पूर्ण हैं। और कृष्ण चंद्र वंश में आए हैं, चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, इसलिए कृष्ण को 16 कलाओं से कहा जाता है, किंतु दोनों पूर्ण हैं। किंतु होने पर भी रामचंद्र जी पूर्ण हैं और कृष्ण पूर्णतम है, दोनों में ही अंतर। रामचंद्र जी उदार हैं और ऐसी करुण लीलाएं की है इसलिए करुण लीला ली, और कृष्ण माधुर्य लीला करने वाले हैं।
जिस समय आपने यहाँ भक्ति धारा का प्रचार प्रसार शुरू किया उस समय के ब्रज में और आज के ब्रज में क्या फर्क महसूस करते हैं?
कुछ कुछ कली का प्रभाव बढ़ गया है, पंडों का उत्पात तो पहले भी था किंतु आजकल पंडों का कुछ कुछ पंडों का स्वभाव बहुत नष्ट हो चुका है। यात्रियों को बहुत तंग करते हैं, जमुना में खड़ा करके शपथ देते हैं कि ये तुम हमको ये दान दो। आजकल साधु संत लोग भी राजनीति में आने लग गए हैं, ये देख रहा हूं। पहले सब लोग परमार्थ रूप में रहते थे, वे लोग भी साधु संत लोग भी देख रहा हूं कि वो सामाजिक सेवा को ही परमार्थ कृष्ण की सेवा समझते हैं।
सामाजिक सेवा को ही परमार्थ कृष्ण की सेवा,
सामाजिक सेवा को ही कृष्ण की सेवा से, भगवत सेवा से अधिक समझते हैं, किंतु वो जानते नहीं। भागवत के लोग पाठ करते हैं किंतु रुपया ले करके करते हैं। पहले ये सब ये भागवत को बिक्री करना है, ये सब बहुत सी कुछ। जमुना पहले देखा था, जब मैं आया यहां 1954 के पहले, जमुना निर्मल थी, पानी बड़ा निर्मल था। अब तो देखते हैं कि दिल्ली का जितना कूड़ा करकट और गंदे नालों का पानी आकर के जमुना अपवित्र जैसी, उसमें आचमन लेने में भी घृणा होती है। ये सब कुछ देखता है। ठीक है, धन्यवाद आप।
एक
ये
उसका पढ़िएगा, कौन सा नहीं पता
क्या समाचार है।
ठीक
ठीक है।
प्रदीप का भतीजा हूँ।
कौन प्रदीप?
प्रदीप खंडेलवाल।
अच्छा, यहाँ से आए हैं?
यहाँ से कला भवन से।
बहुत आप लोग सब ठीक है?
ठीक।
माताजी और पिताजी तो दोनों ही
चलेगा, वो तो चलेगा।
भाई लोग सब ठीक है? आप उन लोगों के पुत्र है, भाइयों के?
भाई सबसे बड़े भाई रहते हैं ना प्रदीप खंडेलवाल के।
हाँ हाँ,
उनका पेटा
बहुत
जो दवाई का काम करते हैं।
हाँ हाँ ठीक। आप लोगों का कल्याण हो, सुखी हो, भक्ति हो। कुछ बोलो। हरि कथा मैंने हमारा भजन संबंध है बोलছিলাম दो तीन दिन धरे। भजन संबंध है, भजन तारतम्य क्रम यही सब बोली बोलছি। भजन भक्ति से प्रथम ना भिलाषिता बोले छिलाम, तारी व्याख्या नाना प्रकार कर दिए, यही सब चल।
विवेचन किया है और आप सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। गाऊंगा, जैसे वहां को सनातन गोस्वामी जी को भी बताया साधन भक्ति के विषय में, और श्री रघु गोस्वामी पाद ने अपने श्री भक्ति रसामी सिंधु ग्रंथ ने भी विचार किया है। उनका कहना है कृति साधना भवे साधना भावा सा साधना मेरा नित्य सिद्ध स्वभाव साधना भजन करते समय हम लोग चाहे कि भक्ति हम बना लेंगे कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं रखें। भगवत वस्तु या भक्ति जो है ये नित्य सिद्ध वस्तु है, इसी को केवल हृदय में प्रकट कराना होता है कि हम अंधेरे में घर में बैठे हुए अंधेरे में हम चाहे कितना ही सूर्य के प्रकाश के लिए सोचे हमें नहीं मिलेगा। जब हम घर से बाहर बाहर में आएंगे बाहर में करेंगे तो हमें प्रकाश मिल जाएगा, लाइट मिलेगा। इसलिए हमें कुछ निकलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। चेतन चेतन में तो यही बात नहीं है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करें उदय भक्ति श्रवण कीर्तन आदि मूला भक्ति है, पर ये शुद्ध चित्त में भाव प्रस्तुत होगा। इसलिए भक्ति का जो परिणाम भाव है जो भक्ति है चिन्मय वस्तु है, शुद्ध वस्तु वैभवी अवकाश सच्चिदानंद विग्रह है, तो वे कैसे आएंगे? हमारे साधन के द्वारा हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, पर प्रकाश होते हैं, लीक होते हैं। जितने भी हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और उस मंत्र में क्या है, अंतर में जो शब्द आता है वसुदेया, इसका तात्पर्य क्या है? जाग जाता हूँ मेरे हृदय में, आप हमारे हृदय में उदित हो, प्रकट हो, तो भगवान को प्रकट कराया जाता है कि वे मेरे हृदय में आ जाए, भक्ति मेरे हृदय में आ जाए। इसलिए कार्तिक के महीना में भी जो प्रवचन हुआ उसमें गुरु जी ने भली भांति समझाया कि ये भक्ति कहां से आए। जो वैष्णव जन भक्त जन है दर्शी भक्त है उनके हृदय से आए, उनके हृदय से साधन हृदय में आए। इसलिए ये भक्ति को साधन करके नहीं पढ़ा जाएगा, शरीर में प्रकट होती फिर हमें साधन को श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना, वस्तु को धारण करने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। अगर हमारा हृदय पात्र बन जाए, इसके लिए हमारा हृदय योग्य बन जाए उन्हें धारण करने के लिए, अन्यथा क्या होता है, सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक बात आई है कि लवणाकर है, रसगुल्ला है, नमक के भेद में यदि रसगुल्ला को रख दिया जाए नमक के बर्तन में पात्र में, तो रसगुल्ला खाने लायक नहीं रहेगा। रसगुल्ला तो अपने आप मीठा है परंतु वो खाने लायक नहीं है। ऐसे साधक हृदय भी पात्र के रूप में बनकर के तैयार हो जाए जिसमें हम ऐसे नित्य सिद्ध वस्तु को रख सकें, तो साधक जीवन में हमारा हृदय को बनाना पड़ेगा, नहीं तो लगातार नहीं क्या होगा, सारे ही नाम तुम्हारे जीवन का परिणाम भजन साधन के प्रभाव से आपका सब जुड़ जाता है, कुछ रहता नहीं है, पर हमारे जीवन में जो भोग आता है वो तो उनका असर होता है। एक अपराध के फल से जो भोग होता है उससे हमें कष्ट स्वीकार करना पड़ता है, और वह कष्ट होता है उसमें अनुभव होता है, और ये भोगवान की इच्छा से यदि हमें कोई कर्म फल भोगना पड़ रहा है उसमें दुख नहीं होता, सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कहा कभी हमारे पूर्व जन्म के इस जन्म के कभी कभी किसी संचित प्रकार से जो अपराध है, अपराध भी एक बीज के रूप में आता है और वह प्रकृत होकर के बीज वृक्ष के रूप में बढ़ जाता है। जैसे भागवत जी ने लिखाया श्री सुखदेव जी महाराज जब षष्ठ स्कंद में हरे राम की महिमा इतनी सुना दी, इसके बाद आगे चलकर दशा का
मोक्ष लघुता एटा एक एक शब्द ते बोले
मुक्ति कर दिया कि तुच्छ हो जाता है, मुक्ति को भी नहीं
कया चक्षुर उन्मीलितांजेन तस्मै श्री गुरवे
नमः Otherwise it becomes tasteless, the wrong taste. why go to nothing? Question arises. Or, as long as we're in Braj, why go to other places in Braj? Why not just stay in a Dwarapur? So she really explained that all tastes are necessary. So therefore we move around in Braj. But then question arises, why go to nothing? Which is higher, to be in nothing, to be in Puri, to be in Braj? So Shiva Brule is resolving these very intricate questions. He's explained that Navadi following Shiva Thakur Bhaktivinoda, for example. Thakur Bhaktivinoda, he's manifested the glories of Navadi Pranam. Before he came, it was covered. He manifested and Shiva Sarvabhada Chakra. Jagannatha Swami Maharaj, he confirmed. So Navadi is actually foremost in now we become more prominent because even though we're residing in Braj, there's some personal offense. We may be residing in Radhapur, there's so many people residing in Radhapur, but they're not making spiritual advancement, rather they're going down. Why? Because they're not under the guidance, they're not under the guidance of bona fide Rasikya, Tattvagya, Rasik, Vaishnava. So, going to another way, then we can get the mercy of Navadi Pranam, just like Shri Jagannatha Swami Maharaj. He was performing bhajan here in Braj, Srinivasan especially, so many years. But then he said, no, I have to go to Navadi, because Navadi is a place where anyone can go, there's no question of offense. So Shri really is explaining his point. He said, what about Puri? So, or what about Varga? Krishna only spent a few years in Vrindavan, and they spent a long time in Dwarka, so Dwarka is more important, right? But the devotees don't feel that Dwarka is more important. If you go to Dwarka, you can even see the place where they said they cremated the body of Sri Krishna. But we don't know that. We don't want to see this place. So Sri Gurudev is resolving these questions of mood. What is the relative importance of Raj? What is the relative importance of Navadi and Purika? So, practicing under his guidance, we understand that following our acharyas and getting the mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu, Satchinanda Gaurahari, so serving in Dasaras, Shri Chaitanya Mahaprabhu, in Navadi, so gradually Shri Chaitanya Mahaprabhu, he reveals his identity as Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Maniyan. That actually is Krishna in the mood of Srimati Radhika, looking for the mood of Srimati Radhika, wanting to taste the mood of Srimati Radhika. Distributing, and after the Jayutra, as far as my Arati and Mantalo, what is he doing? He's tasting the mood of Srimati Radhika, but he wants the jeeves to get his unnatural choice. Savakya Shri means Radhapani Rasa. He wants to taste Radha. Radha's mood. Just like devotees, we understand Radha is the perfection, that we should take shelter of some very elevated devotee in Braj, Bhakta in Braj. So even Krishna is carrying out, even Chaitanya Mahaprabhu is carrying out this process. Krishna is coming as Chaitanya Mahaprabhu, and he's taking shelter of a very elevated devotee in Braj, in Srimati Radhika. So, but we cannot taste that mood, or we cannot have that mood. So, Shri Chaitanya Mahaprabhu, he wants that we should taste Radhapani Rasa. And to that end, he's inspired and empowered his associates, following Shri Rupa Goswami, to distribute this mood of Radhapani Rasa. Shri Chaitanya Mahaprabhu, he's not started at the end of the book, Sayam Rupa Kadavaya Kadavisa. So what about our acharyas are following the line from Shri Rupa Goswami, Shri Rupa Manjari, and taking shelter of these very extraordinary elevated souls so we can receive both Sambandha and Abhideya, but also receive these very wonderful and sacred and beautiful moods in our heart and gradually progress like this. Hare Krishna. Manjari called everybody.
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण कर तत्पश्चात सन्यासी गण ब्रह्मचारी वैष्णवी और सज्जनगण, कल हम भक्ति के तारतम्य को बतला रहा था, श्रद्धा के संबंध में बतलाया और यही श्रद्धा परिपक्व हो करके अनर्थों के दूर हो जाने पर निष्ठा होती है। निष्ठा माने बुद्धि की, बुद्धि के द्वारा मन की स्थिरता। निष्ठा मन को स्थिर करना, मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। हवा को जीत लेना बल्कि सहज है, मन को जीतना नहीं। किंतु अनर्थ के दूर हो जाने पर कुछ कुछ मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होने के बाद में ये किंतु बुद्धिपूर्वक होता है, बुद्धि के द्वारा गुण अवगुण विचार करके होता है। जब यही निष्ठा परिपक्व हो जाती है तब उसको रुचि कहते हैं। निष्ठा में स्वाभाविक रूप से हरिनाम करने की, सेवा करने की, अर्चन करने की, वैष्णव की सेवा करने में रुचि नहीं होती। सोच विचार करके तब लगना पड़ता है, जिससे हमारा कल्याण होगा। जब यही परिपक्व हो जाती है तो उसको रुचि कहते हैं। रुचि हो जाने पर बस काम ठीक हो गया, अब पतन होने का कोई सहज ही सुजोग नहीं होता। हो सकता है किंतु प्रायः रुचि होने से ही, बस रुचि होने से ही वहीं से रागानुगा भक्ति आरंभ हो जाती है। रुचि भी दो प्रकार की बतलाई गई, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षी। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी माने क्या? एक आदमी हरि नाम रुचि कर रहा है, एक आदमी मूर्ति की सेवा कर रहा है, दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के मंदिर में गया। आज जैसे ठाकुर जी को सजाया गया है ऐसा देख करके उसको दर्शन करने में रुचि होगी, बार बार परिक्रमा करेगा और स्तव स्तुति करेगा। ये वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा करते हैं। ठाकुर जी को न सजाया जाए, मंदिर को नहीं सजाया जाए तो बहुत कम लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे नहीं। एक आदमी ताल स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे कहता है, यंत्र के साथ में मिला करके, और गला भी बड़ा सुरीला है, उसको सुन करके उसमें उसका कीर्तन सुनने की रुचि होती है। और भा भा करते हुए कोई उत्तम वैष्णव भी यदि कीर्तन करे उसके कीर्तन को कोई नहीं सुनेगा। तो ये वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी अपेक्षा रखती है, और एक है दूसरी होती है वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षी, अपेक्षा नहीं करती। ठाकुर जी को सजाओ और न सजाओ वो भक्त दर्शन करके मुग्ध हो जाएगा। जगन्नाथ जी काठ की मूर्ति, उसमें भी आंखें गोल गोल, नाक भी नहीं थोड़ी सी नाक, हाथ पैर भी नहीं, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन देख रहे हैं। यह वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित। किंतु ये दोनों जो हैं ये साधन संबंधी हैं। हरिनाम कीर्तन करना, विग्रह की सेवा करना इत्यादि दोनों साधन के संबंध में है। अभी जो साध्य है कृष्ण नाम, ये भजन के प्रति है, भजनीय के प्रति नहीं है। यही रुचि जब अनपेक्षिणी वाली है, ये परिपक्व हो जाती है तो उसको आसक्ति कहते हैं। अब बिना नाम लिए रहा नहीं जाएगा, बिना अर्चन सेवा किए रहा नहीं जाएगा, बिना हरि कथा के रहा नहीं जाएगा। कहीं पर हरि कथा हो रही है, कोई उत्तम वैष्णव या मध्यम वैष्णव भजन कर रहे हैं तो वो गोवर्धन परिक्रमा के लिए राधा कुंड की परिक्रमा में नहीं जाएंगे। और साधारण लोग जिनको अभी रुचि नहीं है वो क्या करेंगे, वो भागवत पाठ श्रवण करना छोड़ करके गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, 84 क्रोश की परिक्रमा करेंगे। तो इसलिए जब आसक्ति हो जाती है तो पहले भजन के प्रति आसक्ति है, हरिनाम करना, वैष्णव की सेवा करना, हरि कथा में आसक्ति रहती है। और वही जब परिपक्व हो जाती है तो बदल करके भजन के प्रति रहते हुए भी भजनीय के प्रति कृष्ण के प्रति हो जाती है। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि, कृष्ण के रूप को विशेष करके बरहा पीड़ाभिरामम मृगमद तिलकम कुंडला चंत गंडम इत्यादि, कस्तूर तिलकम ललाट पटले बस्तक्षले कौस्तुभम न साग्रे बरमुक्तकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम मुक्ते चकंठावली परिभषितो। कैसे सुंदर सुंदर ये सब, फुल्लेन्दिवर कांतिबिंदु बदनम बरहावतन संप्रियम श्री वर्षांक मुदार कौस्तुभ धरम पीताम्बरम सुंदरम गोपी नान नोत पलात्र तनुम गो गोप संभावितम गोविंदम कलवेणीवादन। कृष्ण वो देखेगा, कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं, लाखों बछड़े उनके साथ में हैं या लाखों गायें उनके साथ में हैं। उस समय में कृष्ण जबकि जावट के निकट आते हैं तब उनकी आंखें कुछ खोजती हैं। उस समय खोजते खोजते देखती हैं कि कहीं छिप करके राधा जी और उनकी सहेलियां सब कृष्ण को देख रही हैं। तो गोपी नांग नैनोत पलाश्च चनुम, वहीं से नैनों के द्वारा अर्चन करती हैं कृष्ण का। और कृष्ण क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए उनके उस आरती को ग्रहण करते हैं। उस समय का ये श्लोक है, गो गोप संघावितम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यंगम। तो इसलिए वो भजनीय के प्रति अब हो गया। यही जब परिपक्व दशा में भजनीय के प्रति जब हो जाता है तो उसको रति कृष्ण के प्रति हो जाती है। रति की किसको कहते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुर जान सुसाम विभाग रुचि चित्तमाश्रिण्य किस दशो भाव। क्या तात्पर्य, शुद्ध सत्व मिश्र सत्व बद्ध जीव, शुद्ध सत्व मुक्त जीव जो कृष्ण के परिकर इत्यादि, विशुद्ध सत्व कृष्ण और कृष्ण के जितने परिकर हैं ब्रज के वो विशुद्ध सत्व, और शुद्ध सत्व विशेष आत्मा यही पर विशेष है। इसमें विशेष आत्मा जिसका जिसके भजन के प्रति लोभ है, सुबल सिदाम इत्यादि में जो भाव है, नंद बाबा जसोदा में वात्सल्य का जो भाव है, विशेष करके गोपियों में जो कृष्ण के प्रति उपपत्ति इत्यादि का औपपत्य भाव है, और उससे भी विशेष रूपमंजरी इत्यादि का जो भाव है, उनमें जो है उसकी चिंतन करते करते, भावना करते करते, वो जो श्लोक है ना, कृष्ण को स्मरण करते,
कृष्णम स्मरण
जनन चास, यही श्लोक का तात्पर्य है। कृष्ण का स्मरण करके और उनके गोपियों को, नंद बाबा यशोदा को या सुभद्रा दाम को, उनका चिंतन करते, उनके हृदय में जो शुद्ध सत्व विशेष भाव, वो तुम्हारे अंदर में संक्रमित होगा, तब ये रति। यही क्या है, प्रेम सूर्य का आभास है। बहुत से इसके और भी लक्षण कहे गए हैं। और जब ये सारे अनर्थ संपूर्ण रूप में, अधिकांश नहीं, संपूर्ण रूप में जब दूर हो जाता है, तो कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है, और तब फिर इस जगत में उसका यह पार्थिव शरीर नहीं रहता है, छूट जाता है। प्रेम को सज्ज करने के लिए यह भौतिक शरीर नहीं कर पाएगा, छूट जाएगा। उसका जो नित्य सिद्ध देह है, वो मिलने पर प्रेम किसको बतलाया गया, ध्वंस कारणों अपि
यद्यपि सर्वथा ध्वंस रहितम् यद्यपि ध्वंस कारणे यद्भव बंधनं जूनु सप्रेमा परिकीर्तितः।
प्रेम टूटने का कारण रहने पर भी प्रेम और बढ़ जाता है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर के गोपियों को मथुरा द्वारकापुरी में चले गए, और उन्होंने 16,108 रानियों से शादी कर ली, उनको बच्चे भी हो गए। इधर गोपियां तड़प रहे हैं, उनका प्रेम कम हुआ या और बढ़ गया, और विरहाग्नि, मिलने की अग्नि बढ़ गई। और भी भीष्म प्रहलाद नारद, एक श्लोक है, अनन्य ममता, ममता यशोदा जी का कैसे कृष्ण में ममता है, गोपियों की और करोड़ गुना कृष्ण के प्रति ममता है। और ममता प्रेम संगता, ममता प्रेम को साथ लिए हुए है, ये गोपियों में ही संभव है। भीष्म प्रहलाद नारद इत्यादि के द्वारा इसी को प्रेम कहा गया है। और भी कोई लक्षण है, और एक है याद, सम्यक मशनितो स्वांतो, हृदय अत्यंत द्रवित हो जाता है, हृदय अत्यंत द्रवित। सम्यक मशनितो स्वांतो ममत्व अधिक हो जाता है। गोपियों जैसा कृष्ण के बिना यशोदा मैया बीरा में तड़प तो रही हैं, किंतु राधा जी और उनकी सखियां जैसे प्रेम में पागल हो गई, और भ्रमर गीत, दिव्य उन्माद इत्यादि हुए, मदनाख्य भाव उपस्थित हुआ, ये सब ममता। ममता जितनी ही ममता रहेगी उस जिस वस्तु में, उसके विरह में उसका विरहाग्नि और बढ़ता जाएगा। ये सब प्रेम के लक्षण है। और यही प्रेम मुक्त होने के पश्चात में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव, मोहनाख्य भाव, और इसके बाद में मदन भाख्य भाव, जाकर के ये राधिका में वहीं पर प्रेम की परिसमाप्ति हो जाती है। बोलो श्रीमती राधिका की जय, जय श्री महामंत्र। अनुवाद अंडरस्टूड, बोलो दर्शन करते। Thank you. नाचता नहीं, नाचता नहीं है, कुछ नहीं करते। तुम नाचता नहीं है, नाचते नहीं हो, कहाँ नाचा तुम?
Krishna's body of aggression is fully like and more
Thank you.